शांति। आज का बहुत सुंदर विषय है जो अभी बाबा की मुरली हम लोगों ने सुनी। वैसे तो पिछले सीजन में भी बाबा की मुरलियां चली थी। पिछले सीजन में बाबा ने लगभग 12 मुरलियां चलाई थी और वो मुरलियों का भी टोटल 7 समस्याओं का समाधान करो और कारणों का निवारण करो। उसके बाद इस सीजन की 2 मुरलियां चली। पहली चली वृत्ति से वायुमंडल बनाने की सेवा करो और अभी की जो मुरली चली बेफिकर बादशाह बनो। तो समस्याओं का समाधान कौन करता है? जिन्होंने संकल्पों को बचा। वास्तव में जीवन की समस्या और कुछ नहीं है, जिसके संकल्प व्यर्थ है उसके जीवन में समस्या है, और जो संकल्पों को पॉजिटिव चलाता है उसके जीवन में कोई समस्या नहीं है। तो चाहे पिछले सीजन की मुरलियों का सार भी संकल्प पॉजिटिव बनाना और अभी जो मुरली चली बाबा की पिछली, वही मंडल को पावरफुल बनाओ, वाइब्रेशन से सेवा करो। कौन कर सकता है? जिसके संकल्प पॉजिटिव है, सकारात्मक है, वही यह सेवा कर सकता है। माना संकल्प के ऊपर, क्योंकि सारा आधार है संकल्प के ऊपर। और अभी की जो बाबा की मुरली चली है, बेफिकर बादशाह बनो, बोझ मुक्त बनो। कौन बन सकता है? जो संकल्प में, जिसके संकल्प पॉजिटिव, वही बोझ मुक्त रह सकता है, बेफिकर रह सकता है। संगम युग का बेफिकर बादशाह वही भविष्य का ऊंचा पद प्राप्त कर सकता है। और इसीलिए बाबा ने पिछले सीजन में भी जो एक होमवर्क दिया था, बाबा ने वो याद दिलाया था। तो इसीलिए अपने संकल्प को पॉजिटिव बनाना, संकल्प से पूरा कल्प चलता है, पूरा जो कल्प बनता है संकल्प से। जिसके संकल्प निगेटिव है उसके लिए कल्प भी निगेटिव बन जाता है, और जिसके संकल्प पॉजिटिव है उसके लिए कल्प भी पॉजिटिव रहेगा। इतना ही नहीं, सत्यु का पूरा कारोबार भी संकल्प से चलता है। किसी को मेहमान को बुलाना है, प्रकृति सारा के संकल्प से चलता है। वहां भी टेलीफोन नहीं होगा, मोबाइल नहीं होगा, किसी को बुलाना है तो फोन करो। वहां बच्चों का भी जन्म संकल्प से होता है। तो अगर उस दुनिया में जाना है तो हमारे संकल्प बचाने की जरूरत है। इतना ही नहीं, बाबा ने अभी 3 तकत बताया। 1 भ्रुकुटी आसन का तकत, दूसरा बाप का दिल तकत, और तीसरा भविष्य का राज्य का तकत। लेकिन भ्रुकुटी के तकत पर कौन बैठ सकता है? जिसके संकल्प पॉजिटिव है, सकारात्मक है, वही भ्रुकुटी के तकत पर बैठ सकता है। और जो भ्रुकुटी के तकत पर बैठेगा, आत्माभिमानी स्थिति बनाएगा, वही बाप के तकत पर बैठ सकता है। अर्थात वो ऐसा काम करेगा जो बाबा को भी पसंद आएंगे। और जिसको भ्रुकुटी का तकत मिला, बाबा का तकत मिला, उसको भविष्य का तकत तो मिल ही जाएगा। तो भविष्य के तकत का आधार, भ्रुकुटी के तकत का आधार वो भी संकल्प है। जीवन में अगर सुख चाहिए, शांति चाहिए, आज दुनिया में क्या चाहिए? सुख और शांति किसको मिलती है? जिसके संकल्प पॉजिटिव है, जिसके संकल्प सकारात्मक है, उसको ही सुख है। धन बहुत है, पैसा बहुत है, सब कुछ है, साधन बहुत है, लेकिन जिसके संकल्प ही निगेटिव है उसको फिर भी दुख होगा। इसीलिए बाबा ने कहा कि बेफिकर बादशाह बनो। आज दुनिया में बहुत फिकर है और फिकर के कारण उनको एक दुनिया में नाम है, उसका क्या नाम है जिसको फिकर होती है? तनाव। फिकर का दूसरा नाम तनाव। तनाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंशन। टेन मतलब कितना? दस। और सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब दस बच्चे। कौन से? अनेक इच्छाएं, तृष्णाएं, कामनाएं, बहुत सारी इच्छाएं। आप जिसकी अनेक इच्छाएं, तृष्णाएं, कामनाएं, वो सुखी कैसे रहेगा? जैसे दुनिया में किसी के 10-12 बच्चे हैं, माँ बाप जब शांति से बैठेंगे, एक आएगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, अब उसके कपड़े का प्रबंध करो, दूसरा आएगा पापा जी मुझे परीक्षा की फी देनी है, उसको भगाओ, तीसरा आएगा पापा जी, जितने बच्चे उतनी समस्या भी। इसीलिए दुनिया में कहावत बनी है, छोटा परिवार सुखी परिवार। तो हमारे ब्राह्मणों के कौन से बच्चे? अनेक संकल्प विकल्प, सारा दिन निगेटिव सोचेंगे, व्यर्थ सोचेंगे, और शाम को योग में बैठेंगे, वही संकल्प रूपी बच्चे हिलाते रहेंगे, पापा जी एक को भगाओ, दूसरे के पापा जी, वो बेफिक्र नहीं बन सकता। जिसके संकल्प अनेक है, मुझे ये करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, वो बेफिक्र कैसा बनेगा? इसीलिए बाबा ने कहा कि फिक्र क्या करो, बाप को दो, और बाप से क्या लो? फकुर। फकुर मतलब नशा, रूहानी नशा। इसलिए बेफिक्र बादशाह बनने के लिए अपने संकल्प को बचाना है। परिवर्तन का आधार है संकल्प में परिवर्तन करना। आज कई कहते मेरे संस्कार परिवर्तन ही नहीं होते। संस्कार बने, बोल बने, भावना बनी, वृत्ति बनी, किसे बनी? संकल्प से। संकल्प से वृत्ति बनती है, संकल्प से भावना बनती है, संकल्प से व्यवहार बनता है, संकल्प से बोल बनते हैं, शब्द बनते हैं। सारा खेल संकल्पों का है। अगर मुझे अपने में परिवर्तन लाना है, बैच पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, ये तो ऊपर का परिवर्तन हो गया। कई कहते इसकी और मेरी बनती नहीं है, ये कैसी नहीं बनी? पहले संकल्प चले, अरे ये तो है ही ऐसा, ये है ही ऐसा, वो है ही ऐसा, है ही ऐसा करके मन ने क्या किया? याद दिलाया, अरे वो ऐसा है, ये आपको धोखा देता है। संकल्प चले, वृत्ति निगेटिव बनी, वृत्ति निगेटिव बनी, भावना बनी, व्यवहार निगेटिव बना, बोल निगेटिव बने, और इसलिए वायुमंडल भी, उसको देखते ही वायुमंडल भी निगेटिव। तो ये सब बना कैसे? संकल्प से। इसीलिए बाबा ने कहा कि बच्चे संकल्प को ही पॉजिटिव बनाओ, तब भावना ही पॉजिटिव। समझे कोई सामने से आता है, मन कहता है बेकार है, हमको इसने बहुत धोखा दिया है। मन मतलब कौन? राजा आत्मा है। इस आत्मा राजा को किसने सलाह दी? उसके मंत्री ने, मन मंत्री ने, कहते है बेकार है या अच्छा नहीं है। तो उस राजा मंत्री की सलाह सुन करके राजा चुप हो गया। उसके बाद फिर दोबारा वो व्यक्ति आया, फिर मन कहता है ये बेकार है, बेकार है, बेकार है करके आत्मा राजा को समझाया, और उसे दुश्मनी की, उसको देखते ही सामने सारा खेल बिगाड़ दिया। किसने? मंत्री ने। अगर राजा स्ट्रिक्ट होता तो मन को कहता है, मन जिसके लिए तुम बेकार बोल रहे हैं, भगवान कहते हैं उसको मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, तो फिर मन चुप हो जाता, ना वृत्ति बनती, ना शब्द बनते, ना भावना बनती। इसीलिए संकल्प में अगर किसी के लिए नेगेटिव आता है वही परिवर्तन करो। इतना बड़ा व्यवहार, इतना बड़ा क्रोध, बाकी आगे का ना होता। और जिसके संकल्प प्रमाण से ज्यादा चलता है वो थक जाता है, मानसिक रूप से भी थक जाता है, शरीर के रूप से भी थक जाता है। जिसके संकल्प ज्यादा चलते हैं, निगेटिव चलते हैं, उस घर में लक्ष्मी वास नहीं कर सकती, बरकत भी नहीं हो सकती, वहां शांति नहीं हो सकती, वहां चैन की नींद भी नहीं आएगी। वो भले ज्ञानी है, कैसा भी है, कितना साल से भी पुराना ज्ञान में चल रहे हैं, अगर जिसके संकल्प में निगेटिविटी है वो ना आत्मानुभूति कर सकता है, ना परमात्मा की अनुभूति कर सकता है। वास्तव में आत्मा कोई चीज नहीं है। आत्मा क्या है? जिसके संकल्प कम चले, जिनके संकल्प पॉजिटिव चले, उसकी ऊर्जा बजी, उसी ऊर्जा का नाम है आत्मा। अगर भ्रुकुटी में सदा अपनी ज्योति को जागृत देखना चाहते हैं, संकल्प को कम चलाओ। ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, अगर निगेटिव संकल्प है आत्मानुभूति नहीं होगी। इसलिए सबसे बड़ा बाबा ने कहा ना, ये दो खजाने इंपॉर्टेंट है, कौन से? समय और संकल्प। और समय भी वेस्ट तब जाता है जब संकल्प वेस्ट चलते हैं। इसलिए संकल्प का सबसे बड़ा खजाना है। एक अपना गीत भी है, यूं तो कोई धन व्यर्थ गवाना, लेकिन संकल्प का खजाना इसको कभी भी व्यर्थ नहीं गवाना। संकल्प का खजाना गया, समय का खजाना गया, गुणों का खजाना गया, सारे खजाने व्यर्थ गए। इसलिए संकल्प समर्थ, जिसके संकल्प समर्थ हैं, पॉजिटिव हैं, उसके आसपास में गुण और शक्तियां रहती हैं। दुर्गुण क्यों आते हैं? संकल्प निगेटिव चले, दुर्गुण आ गए। विकार क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये क्या है? निगेटिव संकल्प का परिणाम है विकार। वो विकारों का रूप धारण किया। काम, क्रोध, ये क्यों पैदा हो गए? संकल्प निगेटिव चले। संकल्प हमारा भोजन है, और ये भोजन कहां मिलता है? मुरलियों से, टीवी खोलने से, अखबार पढ़ने से, पड़ोसनी के पास जाकर के बैठने से पॉजिटिव विचार नहीं मिलेंगे। कहां मिलेंगे? मुरली से। जैसे गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दो, वही पेट्रोल का ड्राइवर के मुंह में डालो उसका पाइप, तो क्या लगेगा? गाड़ी का भोजन अलग है, ड्राइवर का भोजन, गाड़ी का भोजन है पेट्रोल डीजल, और उसका जो ड्राइवर है उसका भोजन है सब्जी दाल रोटी। शरीर गाड़ी है, इसका भोजन क्या है? सब्जी दाल रोटी। लेकिन इसका जो ड्राइवर है आत्मा, इसका भोजन है सकारात्मक विचार, पॉजिटिव विचार। और जितना रोज अगर आत्मा को ये भोजन देंगे तो ऑटोमेटिकली आत्मा के संकल्प भी पॉजिटिव चलेंगे। जो अगर आप निगेटिव देखेंगे, निगेटिव सुनेंगे, तो आपके संकल्प भी निगेटिव चलेंगे। कोई आकर के आपको किसी की व्यर्थ बातें सुना रहा है, अरे उसे सावधान रहना, वो ऐसा ऐसा है, सुना, उसके बाद आपके संकल्प शुरू हो गया निगेटिव। अच्छा हो गया इसने मुझे बताया, अच्छा हो गया, मुझे सावधान हो गया। क्यों चले? व्यर्थ बातें आपने सुनी, व्यर्थ बातें देखी। इसीलिए हमें सवेरे 9 बजे तक, क्योंकि सवेरे 9 बजे तक आत्मा पॉजिटिव को लेती है ज्यादा। अब उस समय हमें पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव दिया तो सारा दिन वही संकल्प चलते हैं। इसीलिए बाबा ने पढ़ाई का सिस्टम बनाया, सवेरे अमृतवेला का योग, क्लास के पहले योग और मुरली। ये सवेरे सवेरे 8-9 बजे तक अगर हम मन को शक्तिशाली बनाएंगे तो हमारे संकल्प भी पॉजिटिव चलेंगे। इसलिए संकल्प की बचत करने का संकल्प लेना है। वही आत्माएं, बाबा ने कहा ना, संपन्न बनो और क्या बनो, संपूर्ण बनो। बाबा के साथ प्यार है, प्यार है, इसलिए बाबा के पास आए। लेकिन आप बाबा के साथ प्यार है इसलिए यहां तक आए, तो अब बाबा के साथ प्यार है तो कहां जाना है? ऊपर जाना है। और इसलिए बाबा ने कहा तीव्र पुरुषार्थ करो, और तीव्र पुरुषार्थ की विधि बाबा ने बताई क्या, एक सेकंड में बीती को बिंदी लगाना, संकल्प को बचाना, यह है तीव्र पुरुषार्थ, यह है तीव्र पुरुषार्थ। और जो एक सेकंड में कौन लगा सकता है, जिसको बाबा ने कहा बेफिक्र बादशाह बनने की विधि क्या है, मेरे को तेरे में परिवर्तन करना, मेरा कुछ ही नहीं। मेरा संकल्प वहां चलते हैं जब मेरा मेरा है, मुझे बोला, मेरे को बोला, मेरा ये है, ये मेरा मेरा है, वहां व्यर्थ है। तो मेरे को क्या करो, तेरे में परिवर्तन करो और बेफिक्र बादशाह बनो। जो बेफिक्र बादशाह है अर्थात जिसके संकल्प पॉजिटिव है, उसके चेहरे में खुशी होगी, उसका चेहरा सदा खुश होगा। ये तो कई आजकल बोझ लेके चल रहे हैं, जो बोझ लेके चलता उसको खुशी नहीं होगी। अगर कोई लंबी ट्रेवलिंग करके आता है तो उसको रास्ते में स्टेशन पर कुली मिलता है, तो कुली क्या कहता है, ये भी ले लो, ये भी दे दो मेरे को, ये भी दे दो, अब खाली चलो। तो इसी तरह हमने भी 84 जन्म की यात्रा करके आए हैं, अभी हमें बाबा मिला है, किस रूप में, कुली के रूप में मिला है, और कहता है सारे बोझ क्या करो। लेकिन कई क्या करते हैं, सोचे कि कुली कहीं भाग ना जाए, इसीलिए कोई थोड़ा वैल्यूबल आया होता अपने पास रखते हैं। इसीलिए सारे बोझ बाबा को दो। एक माता जी कहीं रोड पर थी, खड़ी थी, बड़ी गठड़ी थी, सब्जियां वगैरह कुछ फल फ्रूट निकाली थी उसने अपने खेती से। सबको कहते रुपये भी लेके चलो, रुको, कोई रुकता ही नहीं, गाड़ियां फास्ट जा रही थी। तो अचानक कार आई, कार खाली थी, उसको लगा बुढ़िया है, शाम का समय है, तो क्या क्या उसने गठड़ी बड़ी देख करके उसको बिठा दिया, चलने लगा। अचानक उसको रास्ते में याद आया, अरे मैंने उसको पूछा ही नहीं कि कहाँ उतरना है, तो गाड़ी को स्लो किया, रोक दिया, पीछे मुड़कर कहा कि मां को कहाँ उतरना है। जब पीछे मुड़कर देखा तो उसकी गठड़ी उसके सिर पर है, वो बैठे गाड़ी में और गठड़ी। उसको कहा माता जी सीट पर रखो ना, कहते थे मुझे गाड़ी में बिठाने की मेहरबानी की, मैंने सोचा तुम्हारी गाड़ी को बोझ क्यों, इसीलिए मैंने अपनी गठड़ी सिर पर रखा। वो सीट पर रखे, सिर पर रखे, बोझ किसको है, गाड़ी को है। इसी तरह आज हमें बाबा मिला है तो सारे बोझ किसको दो, बाबा को। अब कई बाबा का बनने के बाद भी सिर पर बोझ लेके चल रहे हैं, सारे बोझ बाबा, बेफिक्र बात बनो। आजकल कोई भी व्यक्ति बोझ उठाना नहीं चाहता, क्या करेंगे उसको, व्हील लगाएंगे, अटैची भी लेंगे, कौन सी, आजकल सभी लोग अटैची बैग कौन सी लेते हैं, व्हील वाली, ताकि बोझ उठाना ना पड़े। लेकिन कोई किसी ने अपमान किया, निंदा की, कोई ऐसी घटना हो गई, उसके लिए कोई विलय? कई दिनों की बात लेके चल रहे, और यही समस्या, यही तनाव है, निगेटिव सोच, भावनाएं बिगड़ी, और इसीलिए वायुमंडल क्या हो रहा है? निगेटिव। और जब तक वायुमंडल शुद्ध नहीं बनेगा, एक व्यक्ति के प्रति भी अगर वृत्ति निगेटिव है, भावना निगेटिव है, उसके दिल में बाबा कैसा बैठेगा? बाबा ने पिछली मुरली में भी कहा, ये दिल बाबा का बैठने का स्थान है, उसको स्वच्छ रखो। और वो अस्वच्छ क्यों बना? निगेटिव से। इसलिए अपने संकल्पों को पॉजिटिव बना करके दिल को स्वच्छ करो। दुर्योधन के रथ में नहीं बैठा था कृष्ण, किसके बैठा था? अर्जुन के। उसके लिए 18 दिन तक गीता का ज्ञान सुनाना पड़ा। पहले तो क्वेश्चन करता ही, इनको कैसे छोड़ो, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरा ये है। इसी तरह हम भी कई दिनों से 82 सालों से बाबा गीता का ज्ञान सुना रहे, तो भी क्वेश्चन करते, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। बाबा कहते हैं, तेरे को कहने वाला कौन है? मैं खुद कह रहा हूं, वेरत सोचो नहीं, अब पॉजिटिव बनो, तब दिल में बैठेगा, और जब दिल में बैठेगा तब विजय होगी। इसलिए अब हमें यही पुरुषार्थ करना है, यही संपन्न बनने का, संपूर्ण बनने का आधार है। क्या? व्यर्थों से मुक्त बनना। फरिश्ता क्या है? फरिश्ता मतलब जिसके संकल्प पॉजिटिव है, बेफिकर बादशाह कोई फरिश्ता, कोई बेफिकर बादशाह कहते हैं। फरिश्ता मतलब जिसके संकल्प जो लाइट रहता है, हल्का रहता है, हल्का, घर में रहते हो भी, सब कुछ करते हो भी हल्का, ये नहीं समझो कि घर में रहते हैं, ये समझो कि हम मधुवन निवासी हैं। हम सभी कौन है? मधुवन निवासी। आप भले गृहस्थ में गए, लेकिन कहां से गए? जैसे ब्राह्मण बने, आपका नया जन्म हो गया, और बाबा ने आपको वहां भेजा है, उसी पति ने पूरा कल्प में आपको बहुत सहयोग दिया था, उसी पति के साथ, उसी बच्चों के साथ आपका बहुत बड़ा हिसाब है, उस हिसाब को चुक्त करने के लिए बाबा ने आपको भेजा है, उनकी सेवा करने के लिए भेजा है, ये समझ करके रहना है। ग्रस्ती ने बनकर नहीं, ट्रस्टी, हल्का, तब बोझ नहीं होगा। बोझ तब लगता है, हम क्या ग्रस्ती है ना, ये तो मेरा है ना। अगर कोई बच्चा नहीं सुनता तो बाबा क्या कहो? बाबा आपने मेरे पास आपने जो बच्चा भेजा है वो आजकल नहीं सुनता, तो बाबा देख लेगा। लेकिन हम क्या बोलते? बाबा मेरा बच्चा सुनता ही नहीं ना, तो बाबा क्या कहते? तुम्हारा है, तुम देख लेना, तो मेरा कुछ ही नहीं, मेरे को क्या करो? तेरे में परिवर्तन करो, तब आपको बोझ नहीं लगेगा, वो घर का काम, घर का काम नहीं लगेगा, लेकिन हल्के रहेंगे, हल्के होकर के करेंगे। ये तो दो तीन बच्चों का भी खाना बनाना है, बड़ा टेंशन से बनाएंगे, मेरे को करना पड़ता है, मैं ही करती रहती हूं, ये टेंशन से करेंगे, क्योंकि मेरा समझ करके कर रहे हैं। तो मेरे को तेरे में परिवर्तन करो, पॉजिटिव बनो। और जो निगेटिव सोचता है, जिसके मन में निगेटिविटी आती है, उसको तनाव आता है, और जहां तनाव है, ये क्यों करता है, क्यों, फिर गुस्सा आएगा, फिर वृत्ति निगेटिव बनेगी, जो दुनिया में आजकल हो रहा है, ये गुस्सा वगैरह क्यों आता है? निगेटिव का परिणाम, संकल्प में उनकी निगेटिव। इसीलिए बाबा ने ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, जो हुआ अच्छा, ये सारा ज्ञान किसी लिए सुनाया? संकल्पों को कम चलाने के लिए। अगर इतना सारा ज्ञान सुनने के बाद फिर भी मैं हल्का नहीं हूं, तो भी मेरे संकल्प चलते हैं, इसका मतलब मैं इस ज्ञान को, रियलिटी को समझा ही नहीं। इसलिए अगर देवता बनना है, सत्युग में जाना है, ऊंच पद प्राप्त करना है, तो बेफिक्र बादशाह बनने की जरूरत है, अर्थात व्यर्थों से मुक्त बनने की जरूरत है। जब तक फरिश्ता नहीं बनेंगे, तब तक देवता नहीं बनेंगे। ब्रह्मा कुमारीज बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, ब्राह्मण जीवन हमारा स्टूडेंट लाइफ है, फरिश्ता हमारी डिग्री है, देवता हमारी नौकरी है। जब तक डिग्री नहीं होगी तब तक नौकरी नहीं मिलेगी। और ऐसा नहीं कि यहां जो आएंगे फरिश्ता बनेंगे नहीं तो सत्युग में जाएंगे नहीं, जाएंगे लेकिन कोई दादाजी का पद मिल जाएगा। इसलिए अगर डिग्री लेनी है हल्के बनो, व्यर्थों से मुक्त बनो। और जिसके संकल्प ज्यादा चलते हैं, निगेटिव चलते हैं, बाबा क्यों कहते हैं बच्चे व्यर्थों से मुक्त बनो, क्योंकि ये ज्ञान केवल सत्युग में जाने के लिए नहीं, वर्तमान समय भी अब हेल्दी वेल्दी हैप्पी बनना है व्यर्थों से बनो। तीन प्रकार के स्वास्थ्य होता है, एक होता है मानसिक स्वास्थ्य, दूसरा होता है शरीर का स्वास्थ्य और तीसरा होता है सामाजिक स्वास्थ्य। जिसके ये तीन स्वास्थ्य ठीक है वही सुखी है, वही संपन्न है। तीन स्वास्थ्य हमारे चाहिए अच्छे, मानसिक स्वास्थ्य, शरीर का स्वास्थ्य और तीसरा सामाजिक स्वास्थ्य। जिसका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ गया, निगेटिव बन गया, उसके शरीर की बीमारी होगी। इतना ही नहीं, सामाजिक रूप से भी वो चिड़चिड़ापन होता रहेगा, किसी के साथ बनेंगे नहीं, हमेशा झगड़ा होता रहेगा, हमेशा उगुन दिखते रहेंगे। कारण क्या? मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ा। सबसे इंपॉर्टेंट है मानसिक स्वास्थ्य, और जिसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा अच्छा है वही बेबस है। इसीलिए मानसिक स्वास्थ्य रहे पॉजिटिव विचार। जिसका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ा, निगेटिव विचार चले, उस व्यक्ति का दिमाग हमेशा गर्म रहता है। और जिसका दिमाग गर्म रहता है उसके दिमाग में विभिन्न प्रकार के केमिकल्स उतरते हैं, उसे शरीर की भी बीमारी होगी। इसीलिए कहते हैं ना, कपाव गर्म, पेट नरम, दिमाग ठंडा, डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पांव को कैसे रखो? गरम, पेट नरम और दिमाग ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते ठंडे, दिमाग रहता है गरम। जो आजकल एक फिजिकल योगा चल रहा है सभी तरफ, पूरा देश विदेश में फिजिकल योगा व्यायाम, ये किसी लिए? पांव गर्म करने के लिए, क्योंकि आजकल स्कूटी मिल गई, गाड़ी मिल गई, पैदल कर दिया। और जो पैदल नहीं चलेंगे, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, तो शरीर की बीमारी शुरू होगी। और केवल पैदल चलना ही नहीं, लेकिन संतुलित आहार, पांव गर्म चाहिए, पेट नरम चाहिए। पनीर की सब्जी मिल गई, चार पांच रोटी खा ली, कद्दू की सब्जी देखते नाक मोड़ दे, क्या बनाया पता नहीं। चाहे कद्दू हो चाहे पनीर हो, जितना खाना है उतना ही खाना है। इसे पेट नरम चाहिए और दिमाग ठंडा। दिमाग ठंडा कब रहेगा? जिसकी सोच पॉजिटिव। और अगर ये तीन चीजें आपकी ठीक है, आपका स्वच्छ रहेगा। आज 70% लोगों को जो बीमारियां हो रहे हैं उसका कारण है मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ रहे हैं। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या वाले विचार चलाने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसलिए ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? और आजकल तो सभी के अंदर जलसी है। कल परसों भी बाबा ने कहा था, ये दूसरे को देख करके जलन करते रहते हैं, अंदर से ईर्ष्या करते रहते हैं। ईर्ष्या करेंगे पेट की बीमारी होगी। आज किसी को तो का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता है, आंखों की पुतली फैल जाती है। फिर डॉक्टर कहेंगे जी आजकल मुझे धुंधला दिखता है, कहेंगे चश्मा लगाना पड़ेगा, आप नंबर लग गया। चश्मा तो लगाया फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेगा, नंबर बढ़ता ही जाएगा। किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जो बीती हुई घटना याद करता है उसको देखते ही संकल्प चलना शुरू हो जाते हैं। अब आ गया, अभी क्या बोलेगा? निगेटिव संकल्प, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। इसीलिए बीती हुई बातों को भूल जाओ, जो हुआ क्या हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में रखेंगे, खुल के नहीं बोलेंगे क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, अरे बताओ क्या हुआ, नाराज, कुछ नहीं हुआ, हुआ बहुत कुछ है, दबा कर रख रहे हैं, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को ज्वाइंट पेन होते हैं, गुस्सा करेंगे, गुस्सा करने से ज्वाइंट के ऊपर प्रेशर आता है, मसल प्रेशर आता है, इसी मसल दर्द, ज्वाइंट पेन होता है। आज किसी को बुखार आता है, जिसको फीलिंग आती है उसको फ्लू होता है, फीलिंग की फ्लू। आज किसी को शुगर होती है, शुगर कोई चीनी खाने से नहीं होती है, होती है। चीनी खाने वालों को 30% शुगर होती है, लेकिन 70% जो शुगर हो रहा है उसका कारण है मानसिक तनाव। मैं का पति हूं, मैं इसकी सास हूं, मैं इसका मालिक हूं, मैं इसकी माँ हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया, जब इसकी शादी हुई अपनी पत्नी का मानता, मुझे नहीं पूछता। ऐसे भी से ऐसे केमिकल उतरते हैं, उसे शुगर होती। वो क्यों नहीं मानते? जिसकी इंद्रिया कहना नहीं मानती उसका कहना कोई नहीं मानता। इसलिए शुगर का कारण, जब शुगर होते तो चीज छोड़ देते, निगेटिव सोचना नहीं बंद करेंगे, चीनी छोड़ देंगे। आज किसी को स्पॉन्डाइलाइटिस होता है, सर्वाइल, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए, देखेंगे वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखेंगे, इधर देखता है उसको स्पॉन्डाइलाइटिस होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मेरे गले को जकड़न हो रही, तो डॉक्टर चेक करता है, कहता है आपको स्पॉन्डाइलाइटिस हुआ है, और इसका इधर के डॉक्टर का सा पट्टा लगाता है, जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेंगे न इधर देखेंगे। अगर पहले सीधा देखते जाते तो ये बीमारियां क्यों हो रहे हैं? उसका कारण है निगेटिव सोच। तो निगेटिव के कारण मानसिक बीमारी, और आजकल हर घर घर में डिप्रेशन पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, डिप्रेशन निगेटिव के कारण, तनाव के कारण। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनो, और जो डिप्रेशन में चलता है, निगेटिव सोचता है, उसकी बुद्धि को ताला लगता है, उसको हर एक की अवगुण दिखते हैं, कोई भी अच्छा नहीं दिखता। भगवान ने चुना हुआ है तो भी हम कहेंगे इसको तो कोई अकल नहीं है, पता नहीं कैसे ज्ञान में चलते हैं, पता नहीं कैसे इनको भगवान ने चुना है। भगवान किसी को भी ऐसे ऐसे नहीं चुनता। हमारे अंदर निगेटिव बात आई, हम देहाभिमान में आए, इसलिए दूसरे की बुराई दिखाई पड़ रही। कोई हंसता भी है तो निगेटिव वालों को लगता है मेरे को देखकर जरूर हंस रहे हैं, कोई किसी से बात भी करता लगता है मेरी बात जरूर कर रहे हैं। यही मानसिक तनाव है, और मानसिक तनाव वालों को खुशी नहीं होगी। भले भगवान से मिले हैं, भगवान के सामने रोज बाबा के सामने पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, खुशी नहीं है। क्यों? निगेटिव सोच है, देह भान में है। इसलिए बाबा ने खास इस मुरली में कहा, चे व्यर्थों से मुक्त बनो। यह है तीव्र पुरुषार्थ। नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो ऑपोजिशन। मन चुप। जिसका मन चुप है वो है मूर्ति। मूर्ति कभी बाद में नहीं मानना, मूर्तियों की पूजा उनकी होती है जो यहां संगम में मूर्ति बनते हैं। मूर्ति को जाकर गाली दो, हाथ वरदानी है उसके बजे नीचे करके ऐसा करती है, और यहां अगर कोई गाली देता है 15 दिन उसे बाहर ऐसे जाएंगे, तो कैसी मूर्ति? कई तो हाथ तो ऊपर नीचे जोड़ो ऐसे करेंगे, इसका भी सत्यानाश हो जाए। ऐसा कोई पूजा ही मंदिर में ऐसा है? ऐसा नहीं है। ये है निगेटिव और ये है पॉजिटिव। दुआई दो, कोई कैसा भी हो, कोई किसने कुछ भी किया है तो भी दुआई दो। हम उतावले होकर के कहते इसका भी सत्यानाश हो जाए। अब सत्यानाश शब्द जाएगा उसका तो सत्यानाश करेगा, वापिस हमारा भी सत्यानाश। इसलिए किसी ने मेरे लिए बुरा भी किया तो क्या कहो? इनका कल्याण करना, क्योंकि आप जो SMS भेजेंगे वो सामने वाला भी वही SMS भेजेगा। आज मेरे साथ अगर बुरा व्यवहार करते हैं, गलती उनकी नहीं, गलती मेरे से भी है, मेरी भी संकल्प निगेटिव है। इसीलिए पॉजिटिव बनना। आज एक लेटेस्ट बीमारी हो रहे हैं लोगों को, कौन सी? ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज। उसका भी कारण क्या है? ब्रेन हेमरेज, हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें होती हैं। वो क्या करती हैं? हमारे पूरा ब्रेन को खून सप्लाई करती है। लेकिन जब व्यक्ति तनाव में आता है, निगेटिव सोचता है, ज्यादा सोचता है, वो नसें फट जाती है और उसका कोई इलाज नहीं। फोड़ा होगा, इलाज हो जाएगा, फ्रैक्चर होगा, इलाज होगा, लेकिन ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज का कोई इलाज नहीं है। और आजकल डॉक्टर कोई ईमानदार नहीं होते। सारे डॉक्टर कुछ तो मिलेंगे ईमानदार, लेकिन आजकल तो डॉक्टर जाओ किसी लिए तो और ही भूल का इंजेक्शन देंगे, किडनी भी चोरी करेंगे। तनाव टेंशन में रहने वाले, निगेटिव सोचने वाले जेलों में जाएंगे, पुलिस स्टेशन जाएंगे, कोर्ट कचहरी में जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, उनकी जिंदगी खत्म। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनो, सुखी रहेंगे। इसीलिए बाबा ने कहा कि बेफिकर बादशाह बनो। आजकल डॉक्टर भी क्या कहते हैं, खुश रहो। लेकिन खुश रहने के लिए कोई टैबलेट देता है? लोग खुश होने के लिए लैपिंग क्लब में जाएंगे, हाथ ऊपर करेंगे, हाँ करेंगे, घर में आएंगे, जिसके प्रति निगेटिव बातें भावना उसको देखते चेहरा डाउन हो गए फिर। इसलिए एक शराबी मेरे पास आया था, कहता है भाई मुझे शराब छोड़नी है। हमने कहा क्यों पिया था? कहते किसी ने मुझे धोखा दिया और इसलिए मैं रात भर नींद नहीं करता था, परेशान हो गया। फिर मैं एक दोस्त के पास गया, दोस्त को बताया तो दोस्त ने कहा तुम शराब पियो तो ठीक हो जाएगा। तो हमने कहा फिर छोड़ क्यों रहा है? कहते उसे बहुत तकलीफ हो रही, किडनी भी खराब हो रही। तो हमने कहा शराब पीते समय अच्छी लगी थी? कहते नहीं, बहुत कड़वी थी। फिर हमने कहा पिया क्यों? कहते उन बातों को भूलना था इसीलिए शराब पिया। हमने कहा बातें भी कड़वी थी और शराब भी कड़वी थी, अगर वो बातों को पीता शराब पीने की जरूरत नहीं थी। इसलिए आज निगेटिव वही सोचता है जिसको किसी ने किए हुए गलत व्यवहार को डाइजेस्ट करने की ताकत नहीं है, वही वेरस वेरस सोचता है। इसका मतलब जो बाबा ने ज्ञान दिया है, योग सिखाया, वो ताकत आपके पास नहीं है, इसलिए आपके दिमाग में व्यर्थ विचार चल रहे हैं। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनने की जरूरत है। जैसे कुकर को गैस के ऊपर रखते हैं तो गर्म होता है, गर्म होते होते सीटी मारना शुरू करता है। कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ? निगेटिव सोच रहा है, निगेटिव सोचते सोचते नफरत आएगी, घृणा आएगी, फिर एक दिन कहेगा तुम्हारा 3 साल से देख रही हूं, अब मुझे सहन नहीं हुआ, सीटी मार दी। सीटी क्या है? गुस्सा, मतलब सीटी। गुस्सा एक दिन से नहीं आता है, कई दिनों से निगेटिव विचार चलेंगे, नफरत आएंगी, फिर गुस्सा आएगा। चलो कुकर तो सीटी नहीं भी मारेगा, कोई कचरा फंस जाएगा तो बाजू में सेफ्टी वाला है, वहां से प्रेशर निकल जाएगा। लेकिन मनुष्य को ना कोई सीटी है ऊपर, प्रेशर आएगा, टेंशन आएगा तो फट करके बच जाएगी। ना कोई सीटी भगवान ने बनाया ऊपर, ना कोई सेफ्टी वाल बनाकर रखा है। जब व्यक्ति जब तनाव में आता है, क्यों हुआ मेरे साथ, क्यों हुआ, निगेटिव सोचते सोचते एक दिन आएगा सीटी भी बच जाएगी। फिर ब्रेन ट्यूमर क्या है? प्रेशर, और उसका कोई इलाज नहीं है। इसीलिए कुछ भी चला जाए, किसी ने कुछ भी बोला, कुछ भी ले लिया, नेगेटिव नहीं सोचो। और यही इस ज्ञान का सार है। जिन्होंने इस कर्मों के गुही गति को समझ लिया, अच्छी तरह ड्रामा को समझ लिया, इस दुनिया में रहते हुए भी, परिस्थिति में रहते हुए भी सदा खुश रहेगा, बेफिक्र बादशाह होकर रहेगा, और वही आत्मिक स्थिति में रह सकता है। आत्मिक स्थिति कोई रात भर जागने से, एक पांव खड़ा होने करके मैं आत्मा आत्मा लिखने से नहीं होगी। आत्मिक स्थिति का आधार है पॉजिटिव सोच, सकारात्मक सोच। जिसके सोच ही निगेटिव है वो योग में भी नहीं बैठ सकता। लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करके मैं आत्मा हूं शांत, फिर कहेंगे मेरे उन्होंने क्यों बोला, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूं, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कहेंगे मैं आत्मा, फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला। आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है तो पानी कैसा चाहिए? तीर चाहिए, परम धाम के परमात्मा को मन में देखना ही, मन हमारा स्थिर चाहिए। और जिसका मन स्थिर है वही आत्मदर्शन कर सकता है, सारा दिन अपनी आत्मा ज्योति को देख सकता है। जिसको अपनी आत्मा ज्योति दिखती है वो संसार की कोई चीजों में आकर्षित नहीं हो सकता। इतना नहीं, जो आत्मदर्शन करता है वही परमात्मा दर्शन भी करता है। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनने की जरूरत है। तो मेरे अंदर प्रेशर है, निशानी क्या है? समझो कोई आकर के आपके पति की महिमा कर रहे हैं, अरे तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है। हाँ, वो क्या है मैं ही जानती हूं, वो तो राक्षस है राक्षस, मैं तो उसके साथ कैसी रहती हूं मुझे पता है। अगर पति की महिमा नहीं सुन रहे इसका मतलब उसके लिए अंदर निगेटिव है। कोई सास की महिमा कर रहे हैं, अरे तुम्हारे सास तो बड़ी देवी है, वो क्या है बुढ़िया मैं जानती हूं, मैं कैसी रहती हूं मुझे पता है। अगर सास की महिमा नहीं सुन रहे, पति की महिमा नहीं सुन रहे, अगर कोई टीचर बहन की महिमा नहीं रहे, अरे वो क्या है, इसका मतलब उसके लिए निगेटिव चल रहा है। नहीं नहीं, कोई सामने से आ रहे हैं आप उसको देखना भी पसंद नहीं कर रहे, रास्ता बदल रहे हैं, उसके लिए अंदर निगेटिव है। यही वाइब्रेशन, अगर ऐसा वाइब्रेशन होगा लक्ष्य कैसी यहां धरती पर वास करेगी, कब आएगी? बाबा ये सेवा करो, वाइब्रेशन को अच्छा बनाओ, वृत्ति को सुनाओ। कब बनेगी? जब संकल्प को पॉजिटिव बनाएंगे। संकल्प निगेटिव है, अब कोई सामने नहीं है, दो चार जन में उसकी बुराई हुआ, ऐसा ये अचानक आया, ओम शांति, अभी हम आपको याद कर रहे थे, मुख में राम बगल में छुरी। उसके दिल में बाबा नहीं बैठेगा, सीधी बात है। इतना ही नहीं, ज्ञान का कभी उसकी बुद्धि में नहीं बैठेगा, विचार सागर मंथन भी नहीं चलेगा। सरस्वती हंस के ऊपर बैठते, कौवे के ऊपर नहीं बैठती। कौवा हरता जिसके भावनाएं निगेटिव है, जिसकी वृत्ति निगेटिव है, इसलिए हाँ सफेद दिखाते। सफेद मतलब केवल ड्रेस से सफेद की बात नहीं, दिल भी सफेद चाहिए, भावनाएं वृत्ति ये पॉजिटिव। आज ब्राह्मणों का आपस में बनता नहीं, एक दूसरे बनता नहीं, कैसे? अंदर निगेटिविटी है। तो बाबा ये परिवर्तन है, अपने संकल्प को पॉजिटिव बनाओ, तब हमारे सामाजिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तब हमारा हेल्थ भी अच्छी रहेगी। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनना, इसलिए बाबा ने कहा संकल्प को परिवर्तन करो, संकल्प को पॉजिटिव ना, व्यर्थ संकल्प से मुक्त बनो। तो हम व्यर्थों से मुक्त कैसे बने, उसके लिए चार पांच बातें सुना करके पूरा करता हूं। ये तो मैंने आपको संकल्प से निगेटिव से क्या क्या होता है वो बताया, लेकिन मेरे कोई भी विपरीत परिस्थिति के समय भी संकल्प निगेटिव ना चले उसके लिए हम क्या पुरुषार्थ करें? मेरे संकल्प निगेटिव ना चले, परिस्थितियां विपरीत है, बातें विपरीत है, तो भी संकल्प मेरा ना चले उसके लिए क्या करें? उसके लिए सबसे पहले पढ़ाई, जिसका पढ़ाई पर ध्यान है, मुरली पर ध्यान है, और केवल मुरली नहीं, सवेरे सवेरे तीन चीजें हमें, अगर संकल्प को पॉजिटिव बनाना है, संकल्प व्यर्थ से मुक्त बनना है, समस्या का समाधान करना है, रोज सवेरे हमें तीन चीजों पर ध्यान देना है। एक अमृत वेला का योग, अच्छा, दूसरा क्लास के पहले आधा घंटे का योग, और तीसरा मुरली। ये तीन चीजें जो करता है उसका मनोबल मजबूत होता है, और जिसने सवेरे सवेरे अपना मनोबल मजबूत किया सारा दिन उसका मन चुप रहेगा, परिस्थिति कैसी भी हो मन चुप रहेगा, क्योंकि इन तीन चीजों से उसको असली सुख मिलता है। और जब ये असली सुख मिलता है व्यर्थों से मुक्त है। अमृत वेला का योग, क्लास के पहले योग, और तीसरा मुरली। तो अमृत वेला कौन कौन करता है इसमें से हाथ खड़ा करो? अच्छा, सब लोग करते, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कैसे करते है? अगर उसका कोई वीडियो बनाई जाए, आपका अमृत वेला का योग कैसा होता है आपको पता नहीं चले, कोई वीडियो बना रहे हैं अमृत वेला, आप योग में बैठे हैं, कोई वीडियो बना करके आपको आ जाए सवेरे, ये आपका अमृत वेला का वीडियो है। क्योंकि मेरा है, मैं ऐसा क्या था, दीवार के सहारे बैठे हैं, मुंह खुला आंखें बंद, अगर ऐसा योग करेंगे तो आत्मिक स्थिति कैसी बनेगी, व्यर्थों से मुक्त कैसे बनेगी। इसलिए योग विधि पूर्वक चाहिए, आंख खुली है एकदम, बुद्धि रूपी आंख भी खुली, लगन में मन होकर के ऐसा योग करना है, विधि से करना है। जो विधि से योग करता है, लगन में मगन होकर के योग करता है, उसका मन भरपूर होता है, आत्मिक स्थिति होती है, और तब जाकर के साथ कुछ भी रहता है, इतना ही उसको व्यर्थ नहीं पड़ेगा जिसने योग किया है। इसका तो टॉपिक अलग है, कहने का मतलब अमृत वाला योग अच्छा करो, अच्छा सुख मिलेगा, तो आपको कभी भी मन आपका क्यों क्या में नहीं जाएगा, होने दो, होने दो, साक्षी होकर के देखेगा मन पड़ेगा। क्लास के पहले योग, क्योंकि मूली को समझने के पहले योग जरूरी है। आजकल कहीं मैं सेंटर जाता हूँ, देखता हूँ तो कई सवेरे क्लास का टाइम है, आराम से मुरली क्लास 6:30 बजे चलता है, लेकिन एका दुका आया देश लाल लाइट की सफेद लोग सारे लोग पहुंच गए। इंदौर में बाबा ने सिस्टम बनाकर दिया है, मुझे लगता है हर सेंटर में भी ये सिस्टम है, क्लास के पहले आधा घंटे का मेडिटेशन, उसके बाद मुरली सुना। लेकिन आजकल कई बहाना बनाएंगे, थोड़ा बच्चों के स्कूल में जाते हैं, फिर थोड़ा सा घर दूर है, ये सब बहाना करके योग के समय नहीं आएंगे। आजकल दुनिया में भी बहुत लोग ज्ञान सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, उसमें और हमारे में क्या रहा। अगर क्लास के पहले योग नहीं करते तो मुरली समझ में नहीं। कोई भी धान बोते खेती में, वो खेती को तैयार करते होते, इसी तरह मुरली को समझने के लिए एकाग्रता चाहिए। और जब क्लास के पहले योग करके फिर आप मुरली सुनेंगे, मुरली भी कहां सुने क्लास में, नहीं तो कई तो आजकल क्या बोलते, बहन जी हमारे घर में आजकल बाबा आता है तो हम तो टीवी से पीस ऑफ माइंड मुरली से सुन लेते हैं, इसलिए क्लास में नहीं आएंगे, फेसबुक से व्हाट्सएप से कहीं ना कहीं सुनेंगे। अगर ये तीन चीजें ब्राह्मणों में ठीक नहीं है, अपनी स्थिति नहीं है, इससे फिर सारा दिन ज्ञानी होते भी ऐसा है या ऐसी है, निगेटिव संकल्प चलते हैं, जिसे संकल्प चले उसका समय भी खराब हुआ। कारण यह है, इसलिए तीन चीजों को ठीक कर दो। हमने तो कुछ और किया, हमने इन तीन चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया और इन तीन चीजों से यहां तक लेके आए, ये मजबूत बने। ये तीन चीजें जो करता है उसको किसी के भी दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे, सब अच्छे दिखाई पड़ेंगे। कहते दो, एक दो महिलाएं थी, एक रहती थी नीचे की मंजिल पर, दूसरी रहती थी दो मंजिल पर। तो दो मंजिल वाली रोज अपने घर के खिड़की से पड़ोसनी के छत पर देखती है, वो छत पर कपड़े सुखाते हैं, उसके कपड़े देकर के पति को बुलाती है, कहती इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े हैं, महिले जाकर पूछ के आओ। पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके कहते जाओ पूछ के आओ। जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसनी के कपड़े अच्छे दिखने लगे, फिर पति को बुलाया, कहते आज इसको कैसी अक्ल आ गई, कितना अच्छा धुलाई गया, जाओ पूछ के आओ। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर की खिड़की के कांच साफ किए। चलो दो मिनट बात चल रही थी और चार ही बातें सुनाकर मैं पूरा करूंगा। तो पहली बात सुना रहे थे, वास्तव में उसको दूसरे की कपड़े गंदे क्यों दिखते थे, क्योंकि खुद की खिड़कियां गंदी थी। इसी तरह आज हमारे संकल्प चलते ये क्यों करता है, ये ऐसा क्यों करता है, क्योंकि हमारी खिड़की, तो हमारी खिड़की साफ कब होगी? जो रोज ये तीन चीजें करने से, अमृत वाला योग, क्लास के पहले योग और साथ में मुरली। तो कौन कौन खिड़की रोज साफ करता है अपने? अच्छा कुछ लोग, अच्छा रोज या गुरुवार के दिन? कहे तो गुरुवार के दिन आएगा साफ के, बाकी छुट्टी 8 दिन, ऐसा तो नहीं? खिड़की मतलब घर की नहीं, नहीं तो अभी कुछ दिन पहले मैं नेपाल गया था तो कुछ माताएं 3 दिन की भट्टी थी वहां, तो पहले दिन ही ये क्लास था समस्या व समाधान, तो मैंने ये बात सुनाई थी। तो दूसरे दिन 2-4 माता आई नहीं, तीसरे दिन में हमने पूछा माता, वो बहन जी ने पूछा क्या बात है कल तो आए नहीं आप लोग? कहते हो भैया ने कहा ना खिड़कियां साफ करो, हमने सवेरे से लेकर के सारी खिड़कियां साफ कर दी। मैंने कोई घर की खिड़की नहीं बोली थी, कौन सी खिड़की? बुद्धि रूपी खिड़की। तो अपने रोज खिड़की को क्या करो, साफ करो। और जो ये तीन चीजें करता है उसका मन चुप रहेगा, व्यर्थ से मुक्त बनेगा। तो संकल्प को बचाने का आधार ये तीन चीजें, इससे हमें सारा दिन आत्मिक सुख मिलेगा। कोई कुछ भी बोलता है तो मन चुप रहेगा, रोज खिड़कियों को साफ करना। दूसरी बात है, अगर मन को चुप रखना है, शांत रखना है, मन में जो क्वेश्चन आते हैं उसका कारण है, कई कहते मेरे साथ अन्याय होता है ना, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं कभी इसके रास्ते में गई नहीं, मैंने इसका कुछ बुरा किया नहीं, फिर भी ये मेरे साथ क्यों करता है? ताली कभी एक हाथ से नहीं बसती, ताली के लिए कितना दो हाथ। अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ ऐसा वैसा कर रहे हैं, इसका मतलब आपने भी कभी किया था, क्योंकि दुनिया में जो कुछ हो रहे हैं ये हर व्यक्ति के नीति का, उसके कर्मों का परिणाम है। वर्तमान के मेरे प्रॉब्लम ये मेरे ही कोई कर्मों का परिणाम है, इसके लिए ना कोई व्यक्ति दोषी है ना कोई परिस्थिति दोषी है। और जिसको ये बात पक्की है वो हर विपरीत परिस्थिति में भी मन चुप रहेगा, क्यों क्या नहीं करेगा, या इसने ऐसा क्यों किया क्यों किया। इसलिए इस कर्मों के घुई गति को समझने की जरूरत है। संसार एक कर्म क्षेत्र है और इस कर्म क्षेत्र में जो बोएंगे वही काटेंगे। आज वर्तमान जीवन में मेरे प्रॉब्लम्स आए, काटे आ रहे हैं, इसका मतलब मैंने भी काटे ही बोए थे। इसलिए इस कर्मों की घुई गति को समझना जरूरी है। कर्मों में भगवान भी उसमें बीच में नहीं आ सकता। अगर आपने कर्म किए हैं, अच्छा किया है तो अच्छा मिलेगा, अगर बुरा किए हैं तो उसका फल भी बुरा ही मिलेगा। उसमें प्रारब्ध में कभी भगवान भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसलिए लेकिन हम कहते हैं देखो मैंने इसके साथ कभी किया है नहीं, ये ऐसा करता है, फिर पर चिंतन करेंगे, पर दर्शन करेंगे, औरों का भी टाइम वेस्ट करेंगे, आकाश में थूकेंगे, थूका कहाँ आएगा, अपने मुंह पर आएगा। ऐसी बातें रोने से, कई आजकल दुनिया में हो रहा है ना सुसाइड करते हैं, क्यों? वो परिस्थिति से घबरा गए और सुसाइड किया, तो आत्मा तो सुसाइड हो गई नहीं, वो तो वो जो दुख है उसको अगले जन्म में ब्याज के सही चुकाना पड़ता है। और ही परिस्थिति से भागो नहीं, जैसे बरसात आती है छाता लेके चलते, सर्दी आती है गर्म कपड़े पहनते, अगर गर्मी है तो एसी लगाते। इसी तरह परिस्थिति के लिए प्रबंध करते हैं, इसी तरह हमें भी क्या करना है, परिस्थिति का प्रबंध है। इसीलिए आजकल कहते हैं तनाव मुक्ति नहीं, तनाव का प्रबंध करना। तनाव का क्या करो, तो व्यर्थ संकल्प से प्रबंध करना। क्या प्रबंध? पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव, ये मेरे ही कोई कर्मों का परिणाम है, इसका कोई दोष नहीं है। लेकिन हम अंदर सोच सोच करके ले, उसके लिए नफरत, उसके लिए घृणा, और ये हमने विकर्म किया। एक बहुत बड़ी ड्रामा की सीक्रेट बताएं, आपके घर के, आपके आसपास के, आपके मित्र संबंधी, आपके ऑफिस के जो भी लोग हैं, ये कोई ना कोई आपको देने के लिए आए, कोई आपसे लेने के लिए आए। और जिन्होंने इस लेने और देने की गुई गति को समझ लिया, उसका मन चुप रहेगा, कभी नहीं कहा ये क्यों हो रहा है, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। मन चुप। इसलिए मन को अगर संकल्प को बचाना है, समय को बचाना है, तीव्र पुरुषार्थ करना है, इस कर्मों की गुई गति को समझना है। समझो चलते चलते किसी ने गाली दी, जिसको कर्मों का ज्ञान है वो क्या सोचेगा, अच्छा इसका भी बहुत दिन का बाकी था, पूरा हो गया, संकल्प नहीं चलेंगे। वो किसी को जाकर सुनाएगा नहीं, मेरी इसने गाली दी, और ही कर्जा उसका क्या हो गया, चुक्त हो गया। आज कहीं कहते ज्ञान ही होने के बाद मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे। आपने भी कभी राजा बनकर के उसके साथ किया था, अगर आपका और उसका पिछला जन्म दिखाई जाए तो ऊपर देकर के भगवान तुमने भी आंखें बंद किया क्या, मेरे साथ क्या हो रहा है। आज कोई सास है कि बहू को तंग करें, बहू को परेशान हो रहे हैं, और सास और बहू का पिछला जन्म दिखाई जाए, वो आज जो बहू है पिछले जन्म उसकी सास थी, और जो सास है उस समय कौन थी, बहू थी। इसीलिए कहते ना सास भी कभी बहू थी। इसलिए आपने जिसको धोखा दिया वो आपको धोखा दे रहा, अपना हिसाब चुक्त करने के तीन तरीके हैं। एक है योग लगा करके चुक्त करूं, योग लगाऊं उसे भी चुक्त होगा, अगर योग नहीं लगाते, दूसरा वो आपके तंग करेगा, परेशान करेगा, वो भी आपको सहन करना है, चुप रहना है, सहन करेंगे तो भी उसे आपका क्या हो जाएगा, हिसाब चुक्त हो गया। अगर किसी को सुनाया, औरों को सुनाया, बाबा को जाकर कहे बाबा ये क्या हो रहा है, मुझे ये सब तंग कर रहे हैं, तो बाबा उसको कहता है बच्चे तंग नहीं करना, इसका मतलब उसे मुक्त नहीं हुए। वो व्यक्ति धर्मराजपुरी में अपनी अर्जी डालेगा, इसने मुझे तंग किया, तो धर्मराजपुरी में डंडा मिलेगा, तो कौन सा अच्छा है, कौन सा अच्छा। योग लगा करके चुक्त करो, या फिर सहन करके चुक्त करो। इसीलिए बाबा कहते हैं जीवन की जो समस्या है, जीवन के जो प्रॉब्लम है, ये हमारे ही कोई कर्मों का परिणाम है। इसीलिए इस कर्म गति के गहराई में जाओ तो मन चुप रहेगा। सवेरे उठते ही सोचो आज न जाने किसका किसका हिसाब मुझे चुप्त करना है। चलते चलते परिस्थिति आई, इस कर्मों को समझो, तुरंत मन चुप रहेगा, कभी भी निगेटिव नहीं सोचेगा, और इससे संकल्प बचेंगे, इसे हम बेफिक्र बादशाह बनेंगे। अगर कर्मों का ज्ञान नहीं, क्यों क्या करते रहेंगे, तुरंत चेहरे पर उदासी, चेहरे खुशी गायब हो जाएगी, सारा प्रॉब्लम आएगा। इसलिए कर्म गति को समझना, कर्मों से शरीर बनता है, कर्मों से संबंधी मिलते हैं, सब कुछ कर्मों से होता है। अगर कोई आपका पैसा लेके गया वापिस नहीं दिया, इसका मतलब आपने भी कभी उसको लेके गया होगा। इसलिए और जो इस कर्म गति के गहराई में जाता है उसका मन चुप। तीसरी बात है, पहली कौन सी बताई, रोज अपने खिड़की को साफ करना। दूसरी बात कौन सी बताई, कर्मों की घुई गति। तीसरी बात है, अगर संकल्प को बचाना है, व्यर्थों से मुक्त बनना है, तो एक मंत्र सदा याद रखना, गीता का, रामायण का भी सार है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी, मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो आज तक हुआ वो भी अच्छा हुआ। और वास्तव में संगम युग में महान भाग्यशाली कौन है, जिनके जीवन में प्रॉब्लम ज्यादा आते हैं वो भाग्यशाली, क्योंकि प्रॉब्लम। कल एक भाई ने मुझे कुछ उसके व्हाट्सएप में कुछ आया था, दिखाया था, कांटे पर चलने वाला व्यक्ति उसकी स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि कांटे मना उसको स्पीड क्या करते हैं, बढ़ाते। तो जीवन की परिस्थितियां ही हमें उपराम बनाती। तो आज तक मेरे जीवन में जो परिस्थितियां आई, उन परिस्थिति ने मुझे यहां लाया, उन परिस्थितियों का कितना धन्यवाद। उस समय परिस्थिति जब आई थी तो दर्द लग रहा था, लेकिन अब पता चला उसी परिस्थिति ने हमें यहां लाया। कुंती के सामने कृष्ण जाता है, कुंती को पूछता है तुमको क्या वरदान चाहिए, सोना चांदी जो भी मांगो। कहते मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्याएं चाहिए। तो कृष्ण कहते है तुम ये क्या मांग रहे, तथास्तु तो तुम्हारी जो भी इच्छाएं पूर्ण हो जाए। फिर कहा कि तुमने समस्या क्यों मांगी, सोना चांदी क्यों नहीं मांगा। कहते समस्या होगी, आप सदा मेरे साथ में रहेंगे और आप मेरे साथ में रहेंगे, यही मेरा सौभाग्य है। इसीलिए बाबा कभी कभी कहते हैं बांधेली माताओं का योग मेरे से ज्यादा होता है। क्यों? जब पति तंग करता है, परेशान करता है, उसको कौन याद आता है? बाबा। और जिसको बाबा याद आता है उसका पद भी ऊंचा है। और जिस माताओं को पति तंग नहीं करता, बहुत प्यार करता है, उनका योग किसे लगाए? पति से। और जिनका योग पति से है उसका पद कुछ भी नहीं होगा। तो पति तंग करने वाला चाहिए या प्यार करने वाला चाहिए? इसलिए विघ्न व्यक्ति को महान बनाता है। राम जब वनवास से आता है सबसे पहले कहां गया? मंत्रा और कैकेयी के पास। कहा कि मां आप लोग मेरा स्वागत करने के लिए क्यों नहीं आए? कहते भाई बेटा कैसे आऊं, मैंने तो तेरे को वनवास में भेजा था। कहते नहीं मां, आपने अगर वनवास, मैं जब गया था दशरथ पुत्र राम था, लेकिन आपने भेजने के कारण मैं विजयी राम बन करके, पुरुषोत्तम भगवान राम बन करके विजयी बन करके आया हूं। आपके कारण ये सारा श्रेय आपको पड़ता है। ये है पॉजिटिव। उसने ये नहीं सोचा तुम तो बुढ़ी है ना, तुमने तो मेरी चुगली किया था ना, तुम्हारे कारण 14 साल मुझे जाना पड़ा, थप्पड़ नहीं मारी। आज तक जिन जिन लोगों ने हमें तंग किया, हमारी चुगली लगाई, हमें परेशान किया, उन सबका धन्यवाद। जिन्होंने हमें, अगर वो तंग ना करते तो शांति होती तो घर से मंदिर में कहां जाते? भक्ति क्यों की? जीवन में शांति के लिए, भक्ति करने के लिए गए। फिर ये करते करते धीरे धीरे सेंटर पर आए, सेंटर पर आते इतना अच्छा ज्ञान मिला, परिवार मिला, उन सबका धन्यवाद यहां पहुंचा है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी, जीवन की हर घटना में कल्याण है। इसलिए चुप रहो, कुछ भी होता है उसमें कल्याण है। चाहे आपकी कोई यहां से वहां ट्रांसफर करे, चाहे वो अज्ञान में चलने, कई कहते यहां आए तो यहां भी मुझे तंग करे, वो भी किसी लिए? पॉजिटिव लोग, ये तो मुझे कर्मातीत बना के ही छोड़ेंगे। मूर्ति बनाने के लिए कई लोगों शिल्पकार की जरूरत है। अगर आपको ज्यादा लोग तंग कर रहे हैं तो इसका मतलब जल्दी मूर्ति बना देंगे आपको। इसीलिए आपकी मूर्ति बनाने के लिए कई लोग, और वो घर में रहते हैं, ऑफिस में इधर उधर होते हैं, वो तंग नहीं कर रहे लेकिन आपकी मूर्ति बना रहे। जो आपकी महिमा करते हैं, महिमा करने वाले अच्छे नहीं है, जो आपकी ग्लानी करते हैं, बुराई करते हैं, वो आपको महान बनाना चाहते हैं। ये है पॉजिटिव। इसलिए उनके प्रति अपना दृष्टिकोण बदलो। आज तक जिन्होंने आपकी बुराई की उसे तो अच्छा बने, और अभी भी अगर राम के जीवन में मंत्रा ना आती, ना हनुमान मिलता, ना ऋषि, ना मुनि, कोई नहीं मिलते, किसके कारण मिले? मंत्रा के कारण। तो आज तक हमें बाबा मिला, देवी परिवार मिला, किसके कारण? आज तक ही मंत्राओं के कारण। तो उन मंत्रा को धन्यवाद दो, उनके प्रति जो मन में कुछ भरा हुआ है वो निकाल दो, तब जाकर के मन चुप रहेगा। और जितना मन को चुप रहेंगे, इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा भी वो भी। कहते एक व्यक्ति था, वो रोज पूजा करता है एक मंदिर में, पूजा करता है तो एक दिन मूर्ति के सामने जाकर कहता है भगवान अब खड़े खड़े थकने गए। कहता मैं आपका काम करता हूं। भगत जी मूर्ति बनना, भगवान बनना कोई साधारण बात नहीं, उसके लिए चुप रहना पड़ता है। कहता है, नहीं नहीं मैं रहूंगा। तो बहुत रिक्वेस्ट करने लगा। कहता ठीक है, लेकिन मेरे शर्त है। कहता मैंने तो सबकी नियति पहले से फिक्स किए हैं, किसको क्या सब कुछ अच्छा हो रहा है, तुम्हें चुप रहना, जैसे मैं चुप रहता हूं तुम भी रहना। कहता ठीक है। इतने में वो मूर्ति क्या बन जाते हैं, भगत बन गया, अपना झाड़ू पोछा करके वो भगत की तरह चला गया। भगत क्या बनता है, मूर्ति बनता है, खड़ा रह गया। इतने में एक व्यापारी आया, कहता भगवान मैंने बहुत सारी फैक्ट्री खोली हुई, अब हमेशा मदद किया, अभी एक फैक्ट्री खोलने वाला मदद करना, दर्शन करने के लिए गया, उसका पैसे का पाकेट नीचे गिर गया, वो जाने लगा, उसको टेंशन शुरू हो गया, भाई तरफ पा गया, लेकिन तब तक याद है भगवान ने कहा तुम्हें चुप रहना, फिर चुप रहा। इतने में गरीब आदमी आया, भिखारी, कहते भगवान आप हमेशा ध्यान रखते थे, अभी भी मैं 8 दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ तो दो, आप हमेशा मेरा ध्यान रखते। दर्शन करने के लिए गया, उसकी नजर पॉकेट के ऊपर गई, कहता है भगवान थैंक यू, मैंने थोड़ा ही मांगा था आपने बड़ा पॉकेट दिया। जाने लगा तब तक मूर्ति को और टेंशन शुरू हो गया, और कहता है भाई तुम्हारा ये भगवान का तुम्हें चुप रहना। इतने में एक नाविक जिसको समुद्र जाने के लिए जाना था, कहता है भगवान मैं जा रहा हूं, मेरा परिवार का रखना करके दर्शन करने के लिए गया, तब तक वो व्यापारी पुलिस वालों को लेके आया, कहता सर मेरा बहुत पैसा और मैं जाने के बाद यही आया, इसने लिया। पुलिस वालों ने उसको बेड़े डाल करके लेके जाने लगे, चल थाना चल। तो मूर्ति को लगा ये क्या हो रहा है, पैसा कोई और लेके गया और पकड़ करके किसी और को लेके जा रहे हैं, ये तो बड़ा अन्याय है, और मैं तो अन्याय होने नहीं दूंगा। कहता मैं भगवान बोल रहा हूँ, इसी ने नहीं लिया है, एक गरीब आदमी वही लेके गया। पुलिस वाले इधर उधर क्या था ही नहीं, उसको लगा भगवान ने आशा नहीं की, उसको छोड़ दिया। पीछे मंदिर में गए तो वहां एक गरीब आदमी पकड़ के लेके गए, तो भगवान आया, कैसे कैसा रहा तुम्हारे दिन? कहता है भगवान मैं एक दिन में टेंशन में आ गया, आप यहां हमेशा कैसे रहते हैं? लेकिन फिर भी मैंने कहा कि आपने जब कहा चुप रहा, मैं नहीं रह पाया, मैं न्याय का काम किया। बोला कौन सा किया? कहता है एक व्यापारी आया था, उसका पैसा गिरा था, मैं बोलने वाला था लेकिन आपने कहा, इसलिए मैं चुप रहा। लेकिन एक गरीब आदमी वही उठाकर लेके गया, बोलने वाला था लेकिन आपने कहा, फिर मैं चुप रहा। लेकिन जो रोजी रोटी कमाने के लिए जाने वाला था, पुलिस वाले उसको पकड़ के लेके जा रहे थे, और मैंने बोल करके उसको पुलिस जेल से जाने से बचाया, मैंने अच्छा काम किया ना। अरे तुमने कौन सा अच्छा काम किया? वो व्यापारी के समय तुमने नहीं बोला अच्छा किया, क्योंकि व्यापारी ने 2 नंबर का काम किया था। अगर उसका पैसा गिर गया, उसका जो पाप चढ़ा था वो कम हो गया, उसको दुआएं मिली वो गरीब की, नहीं बोला अच्छा किया। लेकिन उस पुलिस व्यापारी को नाविक को लेके जा रहे थे, तब भी चुप रहना चाहिए था। वो जो नाविक को लेके जा रहे थे उस समय, क्योंकि 2 महीने के बाद समुद्र में बड़ा तूफान आ करके वो मरने वाला था, इसलिए अगर वो जेल में जाता तो बच जाता, तो कौन सा अच्छा काम किया? तो भगवान जो करता है आगे पीछे की सोच के करता है, और मनुष्य जो सोचता है वर्तमान की देख के सोचता है। इसलिए अगर बेफिक्र बादशाह बनना है, मेरे साथ जो कुछ होता है उसमें कल्याण है, क्योंकि भगवान जो करता है मेरे लिए, इस बात को याद रखने वाला बेफिक्र बादशाह है। कुछ भी होता है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहे इस मंत्र को पक्का करो, अपने संकल्प को बचाओ, समय को बचाओ, अन्यथा व्यर्थ संकल्प चलेंगे। तो 3 बातें सुनाई। पहली बात, रोज अपने खिड़की को साफ करना। दूसरी बात कौन सी बताई? कर्मों की घुई गति। और तीसरी बात कौन सी बताई? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा। तीसरी बात है, चौथी बात है, अगर संकल्प को बचाना है, व्यर्थों से मुक्त बनना है, तो ड्रामा को पक्का करो, ड्रामा को पक्का करो। जिसने ड्रामा को पक्का किया उसका संकल्प कम चलेंगे, वो बेफिक्र बादशाह बन सकता है, व्यर्थों से मुक्त बन सकता है। तो किसको किसको अपना ड्रामा पसंद है, हाथ खड़ा करो। अच्छा, सबको पसंद है, नहीं तो कईयों को क्या लगता है, बाबा मुझे मेरा थोड़ा ड्रामा बदल दो, मेरे जीवन में बहुत समस्या आती है। बदलना है किसको ड्रामा? हाँ, नहीं बदलना। अगर ड्रामा बदलते तो ये भी ड्रामा आपका बदल जाएगा। इसीलिए ड्रामा, वैसे तो हम 3 बाप के बच्चे, बाप कितने हैं? 3 बाप हैं, लेकिन माँ कितने हैं? 4, ब्रह्मा, मम्मा, लौकिक माँ, ड्रामा, सबसे मतों की माँ। और माँ तो माँ होते हैं, माँ कभी भी बच्चे का बुरा, बच्चा अगर बीमार है माँ उसको दवाई पिलाते हैं, अगर दवाई कड़वी है बच्चा नहीं पीता, माँ उसका हाथ पकड़ करके फिर भी दवाई पिलाएंगे। इसी तरह ड्रामा भी हमारी माँ है, कभी कभी हमारे सामने कड़वी बातें लाती है, लेकिन उस बातों में भी कल्याण है। आज तक ड्रामा की जितनी भी बातें हैं उसे कल्याण हुआ या कल्याण हुआ। इसलिए ड्रामा को पसंद करो। इसलिए मुझे लगता है पिछले 2-3 साल पहले बाबा की जो मुरलियां चली थी उस समय दादी यहीं, गुलजार दादी यहीं थी, दादी की तबीयत थोड़ी नाजुक थी इसीलिए बीच में ला करके थोड़ा सा चलती थी मुरली, और मुरली रिपीट होती थी वही बातें, वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह, बाप के दिल में बच्चे, बच्चों के दिल में, कभी कभी 40-50 बार वो बातें रिपीट होती थी। तो कई भाई बहने कहते थे बाबा ये ऐसी मुरली क्यों चला रहे, वास्तव में टोटल ज्ञान का सारा है वाह वाह। कोई गाली दे तो भी, कोई झगड़ा करे तो भी, कोई अपमान करे तो भी, कोई निंदा करे तो भी, कोई माताजी का पति शराब पी करके पिटाई करे तो भी, वो क्या निकालना है। अब माताजी कहेंगे वो वाह वाह कैसे निकलेगा। क्यों, उस माता के लिए तो पति तो बहुत मिले ना, सत्युग में मिला था, त्रेता में मिला था, द्वापर में मिला था, अभी भी मिला है। सत्युग उसके पति तो बहुत अच्छे थे, ना मारते थे ना पीटते थे ना, वो देवता के रूप में थे। लेकिन क्या वो देवता रूपी पति के कारण बाबा मिला, और अभी का पति शराबी है, मारता है, पीटता है, उसके कारण कौन मिला है? तो उस माता के लिए देवता वाली पति अच्छा है अभी का अच्छा, कौन सा पति अच्छा है? संगमिक जो पति भले ज्ञान में नहीं चलता तो भी अच्छा है, क्योंकि उसके कारण आपको बाबा मिला है। सास तो सत्युग में मिली थी ना, वो देवी थी, कभी झगड़ा नहीं करती थी, लेकिन उस सास के कारण बाबा थोड़ी मिला है। बच्चे सत्युग में भी मिले थे, बहुत अच्छे थे, लेकिन उनके कारण बाबा थोड़ी मिला। इतना ही नहीं, सत्युग में भी आपको शरीर मिला था, बहुत कंचन काया था, उसे खुशबू आती थी, दिखने में सुंदर था, लेकिन क्या उस शरीर में बाबा मिला? उस शरीर के आंखों ने भगवान को देखा क्या? उन शरीर के कानों ने भगवान के मावों के सुने क्या? वो दिल के धड़कनों में भगवान की श्वास रहती थी? वो शरीर क्या काम का जिसने भगवान की धड़कन है ना हो, जिसको भगवान है ना, इसीलिए शरीर काला हो, गोरा हो, बीमार हो, कभी शब्द वाह तुम शरीर वाह, तो भी आपको कई संकल्प, नजर बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। इसलिए सत्युग से भी ये लाइफ ऊंचा है, पड़ोसनी भी अच्छी है, पति भी अच्छा है, बच्चे भी अच्छे है, वाह वाह करते रहो, जो वाह वाह करता है उसके संकल्प। इसलिए ड्रामा को पसंद करो, वाह ड्रामा वाह, वाह 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 वाह, वो व्यर्थों से मुक्त है। इसलिए ड्रामा के, इसलिए बाबा कहते ना, बाप के ऊपर विश्वास, स्वयं के ऊपर विश्वास, परिवार के ऊपर विश्वास, और ड्रामा के ऊपर विश्वास चाहिए। और जिसका ड्रामा के ऊपर विश्वास है, बाबा ने चुना हुआ है, इसका मतलब आपके अंदर बहुत सारी विशेषता है। बाबा ऐसे वैसे को नहीं चुनता, इसलिए किसी आपके पड़ोसी भी है जो भी है सब अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तब ड्रामा के ऊपर जितना विश्वास रखेंगे वाह वाह करेंगे। ये तो कभी कभी हम क्या होते, परेशान होकर के बाबा कहते बाबा मेरा ड्रामा को सीन बदल दो। जैसे कोई माँ बच्चे को थप्पड़ मारती है, बच्चा कहाँ जाता है? बाप के पास। और क्या बोलता है? मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारी, इतना ही बोलता ना। ये थोड़ी बोलता है मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारी, इस मम्मी को बाजार में बेच करके दूसरी लिखे बोलता है। इसलिए ड्रामा के ऊपर विश्वास। तो चार बातें और लास्ट की एक बात सुना करके पूरा करेंगे। अगर संकल्पों को बचाना है, समय को बचाना है, तो निगेटिव को क्या बना दो? पॉजिटिव। जो निगेटिव परिस्थिति को पॉजिटिव बनाता है उसका मन चुप रहेगा, व्यर्थों से मुक्त बनेंगे। जैसे कोई गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो क्या करते हैं? गाड़ी को टर्न करते हैं, बहुत बड़ी एक्सीडेंट से बच सकता है। इसलिए निगेटिव को पॉजिटिव। कभी कभी हमारे निगेटिव संकल्प चलते हैं, कोई मेरा अपमान किया, निगेटिव संकल्प चलते हैं, किसी ने मेरा परचिंतन किया, निगेटिव संकल्प चलते हैं। उस निगेटिव बात को क्या बना दो? पॉजिटिव। किसी ने अपमान किया तो क्या कहूं? अपमान नहीं किया, मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया। जो संगम युग में आपका अपमान करेंगे वही द्वापर युग में क्या करेंगे? भगत बनकर के रोज आपके ऊपर, मूर्ति के ऊपर गुलाब का फूल चढ़ाएंगे। तो भगत चाहिए क्या? नहीं चाहिए। किसी ने आपका परिचिंतन किया, नफरत की, बाबा तो आपके आपसे प्यार कर रहे हैं, लेकिन आपके आसपास वाले आपसे नफरत कर रहे हैं, कोई बात नहीं, नफरत करने वाले ही महिमा गाएंगे। आप पॉजिटिव बनो, आप भी उसके लिए नफरत नहीं करो, आपके दिल में उसके लिए प्यार रखो। निगेटिव को क्या बना दो, पॉजिटिव। नहीं तो हम भी नफरत करेंगे तो फिर उसका जिम्मे और बाबा नहीं। आप पॉजिटिव बनो। जैसे भक्ति भक्ति मार्ग में क्या करते, भजन करते हैं। आप लोग तो नहीं करते ना भजन। भजन में क्या होता है, दो चार जन इकट्ठे होते हैं, एक जन ताल बजाता है, एक जन डपले बजाता है, एक जन गाता है, उसको कहते हैं कीर्तन भजन। इसी तरह परचिंतन में भी क्या होता है, दो चार जन इकट्ठे होंगे, एक कहेंगे वो है ही ऐसी, दूसरे कहेंगे हाँ मेरे साथ भी ऐसा क्या, माना एक जन ढोल बजा रहा है, एक जन गा रहा है, दूसरा ताल बजा रहे हैं। अगर एक घंटा यहां आपका किसी ने परचिंतन किया, वही लोग दोपहर में आपके मूर्ति के सामने आएंगे, और जिसने कहा कि ये है ही ऐसा, वो गाने का काम करेगा, देवता तुम बहुत अच्छे हो। जिसने हा में हा मतलब ढोल बजाएगा, कोई ताल भी बजाएगा। तो जिस दिन किसी ने परचिंतन किया, किसी ने आपको बताया रे तुम्हारे बारे में ऐसे बोल रहे, शाम को जब योग में बैठेंगे बाबा को, बाबा आज आपको बहुत धन्यवाद, आपने भजन मंडली भेजी थी, उन्होंने बहुत अच्छा भजन किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। निगेटिव को क्या बना दिया, पॉजिटिव। और जो निगेटिव को पॉजिटिव बनाना जानता है, अपने संकल्प को समय को बचा सकता है, बेफिक्र बादशाह बन सकता है, वो कभी भी निगेटिव तनाव टेंशन से दूर रह सकता है। बाबा को कितनी, आज कईयों को लगता मुझे और कुछ नहीं बुरा लगता, जिनको मैंने पढ़ाया लिखाया छोटे से बड़ा किया, और यही बच्चा मुझे तंग करता है। संसार का नियम है, जिसका भला करेंगे वही आपका बुरा करेगा, ये संसार का नियम है। ये केवल आपके साथ नहीं हो रहा है, सबके साथ हो रहा है। देखो शिव बाबा जिन्होंने हमको कलयुग में कहां नाली से उठा करके, कचरे से उठा करके क्या किया, इतना पढ़ाया, इतना ज्ञानी बनाया, इतनी पालना दी। और जब हम सतयुग में गए, सोने के महल में गए, जब सोने के महल में प्रवेश किया तो बाबा को धन्यवाद दिया, बाबा थैंक यू, आपके कारण मेरे को सोने का महल मिल रहा है, मैं राजा बन रहा हूं। जब वहां राजा का उद्घाटन हुआ उस समय बाबा को थैंक्स बोला, उस समय जो आपका कोई प्रोग्राम होगा, राज्याभिषेक होगा, उस समय थैंक बोला। अगर समझो आपका बच्चा जिसको पढ़ाया लिखाया और उसकी शादी के दिन आपको बुलाए नहीं, बाकी सबको बुलाया, आपको कैसी तड़पन होगी, देखो इस बच्चे को मैंने कैसे पालना किया, कितना सोचेंगे। तो बाबा को भी तो दिल तो है ना, लेकिन बाबा ने कभी, इसीलिए बाबा निराकारी क्यों है, बाबा इसी बात पे कभी सोचता ही नहीं। इसको ही कहते बाप समान, मान अपमान निंदा स्तुति में भी समान। ये है संपन्न और संपूर्ण बनना, समान बनना। इतना ही नहीं, द्वापर में गए, जिसने भला करके गया था उनको क्या किया, गाली देना शुरू किया, हे भगवान तुम कुत्ते में बिल्ली में, अकेले में नहीं दिया, माइक लगाया और उनको भी बोला चलो आप भी चलो हमारे साथ, किसके लिए, गाली देने के लिए। बताओ बाबा ने सुना नहीं होगा, फिर भी बाबा ने क्या किया, सोचा ये मेरे भगत है, मेरी भक्ति कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जब लास्ट में बाबा ने सोचा जब मैं नीचे जाऊंगा, जिन्होंने गाली दिया उनको कभी नहीं ज्ञानी बनाऊंगा, उनको कभी नहीं ज्ञान सुनाऊंगा। पिछले बार मैंने पिछले कलम में देख के फंस गया था, उन्होंने मुझे जब सुखी बने तो पूछा ही नहीं, सोचा उन्हीं गाली देने वालों को क्या किया, गले लगाया। जब बाबा ने भी गले लगाया तो आज ये है बेफिक्र बात है। निगेटिव को क्या बना दिया, पॉजिटिव। तो जो निगेटिव को, इसीलिए बाबा दया का सागर, क्षमा का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर है। तो ऐसे बाप समान बनने के लिए हमें निगेटिव को पॉजिटिव बनाना है, और जो निगेटिव को पॉजिटिव बनाता है उसका मन चुप रहेगा, व्यर्थों से मुक्त बनेगा। तो व्यर्थों से मुक्त बनने के लिए ये पांच चीजें, इससे हम बेफिक्र बादशाह बन सकते हैं, अशरीरी बन सकते हैं, तीन तखत पर बैठ सकते हैं, समय को बचा सकते हैं। ये टोटल मुरली को धारण करने के लिए पांच बातें। पहली बात कौन सी बताई, रोज खिड़की को साफ करना, दूसरी बात कौन सी बताई? कर्मों की घुई गति के गहराई में जाना, और जिसके अंदर कुछ, जिसके लिए कुछ नफरत है कुछ निकाल देना। तीसरी बात, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। चौथा कौन सा बताया? ड्रामा के ऊपर विश्वास। पांचवा कौन सा बताया? नेगेटिव खा दो पॉजिटिव। तब संकल्प को बचा करके अपने मन को स्थिर करके तीव्र पुरुषार्थ कर सकते हैं, सदा अपने ब्रुकुटी के आसन में बैठ सकते हैं, क्यों क्या के चक्कर से छूट सकते हैं। ठीक है, ओम शांति।